जीवन को अच्छा बना सकते हैं और इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बन सकते हैं। ऐसी ही भावना जिससे कि हम अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में कारण बन सके, हमने कल से भावना शुरू की है। ये ऐसी भावना है जो अपने कल्याण के साथ साथ पर कल्याण में कारण बनती है और एक ऐसे पद पर हमें पहुंचा देती है जो तीन लोक में पूज्य पद है, जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा। तीर्थ यानी धर्म, जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। वे स्वयं उस धर्म के मार्ग पर चलते हैं और उनके उपदेश से जीव अपना कल्याण करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलकर उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि वे तीर्थंकर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ये 16 कारण भावनाएं जिन्हें केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठकर अत्यंत विशुद्धि से भाने पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। चौथे गुणस्थान से लेकर के आठवें गुणस्थान तक इस कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। इसका प्रारंभ लेकिन मनुष्य गति में ही होता है, इसलिए हम मनुष्य होने के नाते इस प्रकार की भावना भाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। पहली भावना जिसमें कि हम अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, श्रद्धा के द्वारा उस आत्म स्वरूप का श्रद्धान करके उसे ही प्राप्त करने की भावना लाते हैं, और फिर धीरे धीरे दृष्टि इतनी निर्मल होती है कि प्राणी मात्र अपना आत्म कल्याण करे, ऐसा भाव हमारे भीतर आने लगता है। इसे ही दर्शन विशुद्धि कहते हैं। आत्मा में रुचि होना यह सम्यक दर्शन है, लेकिन मेरे ही समान आत्माएं इस संसार में हैं, वे भी आत्म रुचि के द्वारा अपना कल्याण करें, यह एक विशिष्ट भावना है। ये विरले ही जीवों को होती है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति सब जीवों को नहीं प्राप्त होती, कुछ ही लोग इस पद को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ही ये दृष्टि हमें प्राप्त होती है कि मेरे जैसी ही आत्मा सबके भीतर है, और मैं जैसे अपनी आत्मा के कल्याण का विचार रखता हूं, ऐसे ही सब जीव भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, ये विचार भी धीरे धीरे हमारे मन में आने लगे, और उसके बाद जहां सद्गुण है या जो भी सद्गुण है, उन सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए और जिन्होंने उन सद्गुणों को प्राप्त कर लिया है उनके प्रति हमारे मन में जो एक विनय का भाव है, वह दूसरे नंबर की भावना है। विनय संपन्नता, पूज पुरुषों का आदर सम्मान करना, उनके प्रति भक्ति भाव रखना, उनके आने पर खड़े हो जाना, प्रणाम इत्यादि करके उनके प्रति नम्रता का भाव होना, ये विनय कहलाती है। संसार में सभी लोग विनय करते हैं, लेकिन वह विनय और विनय संपन्नता दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संसार में लोकानुवृत्ति अर्थ निमित्तक विनय, विषय पोषक विनय या भय विषयक विनय, ऐसी चार प्रकार की विनय सब संसारी जीव करते हैं। लोकानुवृत्ति यानी जो देश काल के अनुरूप प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति करना, ये लोकानुवृत्ति नाम की विनय कहलाती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चाहे जिसके सामने झुक जाना, ये अर्थ निमित्तक विनय कहलाती है। ये सब संसार बढ़ाने वाली है। अपने विषय कषाय की पूर्ति के लिए भी, और विनय अपन व्यक्त करते हैं, और इसी वजह से तो यह विनय न कहला करके चापलूसी कहलाने लगती है। सब समझते हैं इस चीज को, वरना विनय तो आत्मा का गुण है। अगर यह लोकानुवृत्ति या अर्थ निमित्तक विनय भी वास्तविक विनय हो जाती, तब तो सबके पास यह है। और भय विषयक विनय, भयभीत होकर के भी हम हाथ जोड़ लेते हैं, वह सब विनय यहां पर मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो सद्गुण धारण करना, और जिसके पास सद्गुण है उसके प्रति जो विनय का भाव है, उन गुणों के प्रति जो विनय का भाव है, या स्वयं गुणों को धारण करना, उसका नाम विनय है। रत्नत्रय और रत्नत्रय की आराधना करने वाले या रत्नत्रय की साधना करने वाले की विनय करना, वास्तव में विनय संपन्नता है, और उसी के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि मोक्ष मार्ग में तो असंयत और संयत असंयत के आने पर भी खड़े होकर विनय करना अनुचित है। मोक्ष मार्ग में मैं भगवती आराधना में पढ़ करके ये दंग रह गया, और अभी अगर एक नेता नुमा कोई व्यक्ति आ जाए तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे धर्म सभा में। लिखा है कि एक असंयत और संयता संयत यानी देश संयमी के लिए भी आने पर खड़े हो जाना यह विनय अनुचित है, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग में तो अनुचित है, संसार में तो यह विनय ठीक है। मोक्ष मार्ग में तो सिर्फ जिसने रत्नत्रय धारण किया है, वीतरागता के मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्गी है, उसकी ही विनय योग्य है। और इसके साथ साथ यह भी सावधानी रखना, इसमें लिखा कि जो रत्नत्रय को धारण करके जिनेंद्र भगवान के कहे हुए मार्ग पर जिन मुद्रा को धारण करके चल रहे हैं, उन्हें देखने पर ईर्ष्या और द्वेषवश उनकी विनय नहीं करना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। हाँ, यह दोनों बातें बड़ी मैंने स्मरण में रखने की है। मैं फिर से दोहराऊं, एक तरफ हम असंयत और संयता संयत की विनय करने तैयार हो जाते हैं, और एक तरफ जो संयम के मार्ग पर चल रहा है, जिसने जिन मुद्रा धारण की है, उससे ईर्ष्या और द्वेष बस उसकी विनय नहीं करते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है? अभी हमारी दृष्टि निर्मल नहीं हुई, दर्शन विशुद्धि तो बहुत बात की बात है, और बिना दर्शन विशुद्धि के विनय संपन्नता आ नहीं सकती। दर्शन विशुद्धि पूर्वक ही विनय संपन्नता होगी, जिससे कि तीर्थंकर प्रकृति का अर्जन करने की हमारे भीतर क्षमता या की योग्यता उत्पन्न होगी। विनय एक ऐसा गुण है जो कि सारे संसार को जिसके माध्यम से जीता जा सकता है। अपन सब ये घटना पढ़ते हैं कि एक बार बांस के पेड़ और बट के वृक्ष में आपस में बातचीत हो रही थी, तो बट के वृक्ष ने कहा कि तुम्हारा होना किसी के लिए भी सार्थक नहीं है, ना तुम्हारी छाया होती है, ना तुम में फल लगते हैं, और तुम जब सूख जाते हो तो दूसरे को पीटने के काम आते हो। ऐसा बटवृक्ष ने उस बांस के वृक्ष से कहा, बांस का वृक्ष चुप रहा। अब क्या जवाब दे? उसने कोई तर्क नहीं दिया। जब हमारे पास तथ्य हो तब तर्क की आवश्यकता नहीं होती, और तथ्य जो है, सत्य जो है, उसके प्रकट होने का इंतजार किया जाता है, उसके लिए कोई आर्गुमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शायद इसीलिए बांस के वृक्ष ने कुछ नहीं कहा। और एक दिन आई आंधी पानी तूफान, इतनी तेज हवा चली कि बट वृक्ष जो है जड़ से उखड़ करके धराशायी हो गया। लेकिन उस तेज आंधी पानी तूफान में वो बांस के वृक्ष जमीन में लेट गए, ऐसा मालूम पड़ता था कि गए ये भी। लेकिन जैसे ही आंधी पानी तूफान थमा, वे फिर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। जो अकड़ता है वो टूट जाता है, जो झुकता है वो बचा रह जाता है। ये खूब अपन पढ़ते हैं, जानते भी हैं। एक कन्फ्यूशियस नाम के दार्शनिक हुए, वे हंसी हंसी में दर्शन की बातें कहते थे। उन्होंने भी यही बात समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। एक व्यक्ति ने कहा की बड़ी प्रशंसा होती है विनय की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये विनय क्या चीज है और कैसे इसका महत्व इतना हो गया। तो रस्ते में जा रहे हैं वो और फौरन बोलते हैं उससे कि मेरे मुंह में झांको। अरे कोई प्रश्न करे और सामने वाला जवाब न दे और मुंह खोल कर कहे मेरे मुंह में झांको, तो उसने कहा, उसको हंसी आ गई, उसने कहा उसमें झांकना क्या है, एक भी नहीं बचा 32 में से, अब टूट गए थे सब, वृद्धावस्था थी, तो कहते और क्या बचा भीतर, कहते जिब्भा। अरे जो बाद में आया वो पहले चला गया और जो पहले से है वो अभी तक है, कारण क्या है? जिब्भा कोमल है, विनयवान है, पहले से है और हमेशा रहेगी, और दांत अपनी अकड़ के कारण पहले ही चले गए, कठोरता नष्ट हो जाती है, विनय और मृदुता सदा बनी रहती है, ये सभी लोग जानते हैं। बस इतना ही अपने को सीखना है कि हम संसार में संसार बढ़ाने के लिए तो विनय बहुत करते हैं कदम कदम पर, लेकिन मोक्ष मार्ग में यह विनय अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है, तीर्थंकर के जितनी ऊंचाई को छू सकता है। मोक्ष मार्ग में विनय के 5 भेद कहे गए हैं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। इन 5ों पर थोड़ा सा विचार कर लें। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन बिंब जिनालय जिन धर्म जिन वाणी और सम्यक दर्शन, इन 10 के प्रति अत्यंत विनय का भाव रखना। और इतना ही नहीं, निरंतर इनके जैसे बनने की भावना रखना और यदि संभव हो सके तो इनके जैसे बनना, यही दर्शन की विनय है। अरहंत पद को प्राप्त करना दर्शन की विनय है, सिद्ध पद को प्राप्त करना दर्शन विनय है, जो बना जा सकता है। पंच परमेष्ठी के पद प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके जैसे पद की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना, यह है दर्शन की विनय। अकेले सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेना दर्शन की विनय नहीं है, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उनकी विनय करना, यह दर्शन विनय है। कभी किसी व्यक्ति को सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत श्रद्धावान देख करके अपना मन गदगद होता है कि नहीं, कि देखो कितनी श्रद्धा है इनकी, सुबह से जो है बिना मंदिर जाए संसार के काम नहीं करते हैं, और मैं तो जो है पहले संसार के काम करता हूं बाद में भगवान को याद करता हूं। अरे मेरी श्रद्धा तो इनसे कम है, मुझे भी ऐसी ही श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए कि सबसे पहले सुबह से जीवन की शुरुआत में करूं तो पंच परमेष्ठी के दर्शन वंदन से शुरू करूं, अपने जीवन में भी वैसे ही बनने की भावना भा करके अपने जीवन की शुरुआत करूं। अपन लोग तो दूसरे की श्रद्धा को क्या उसकी हंसी उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। जी आ गए पुजारी, रोज मंदिर जाते हैं, क्या धरा है रोज मंदिर जाने में, ऐसा कहेंगे। इससे क्या होता है, हम भले ही नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो कर रहा है उसके प्रति भी विनय नहीं रख पाते हैं, तो अपना ही घाटा करते हैं, अपनी ही हानि करते हैं। दूसरा किस दृष्टि से कर रहा है उसकी वो जाने, उसकी श्रद्धा कैसी है, सच्ची है कि झूठी है वो जाने, हम क्यों अपने मन को किसी की श्रद्धा देख करके और कलुषित करें। दर्शन विशुद्धि में यह बहुत आवश्यक है। दर्शन की विनय में यह बहुत आवश्यक है कि हम जहां भी श्रद्धालु है उसकी श्रद्धा का को प्रणाम करें और श्रद्धालु के प्रति अपने मन में विनय का भाव रखें, किसी की भी श्रद्धा को चोट ना पहुंचाएं, बल्कि हो सके तो उसके भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें, अपने भीतर भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें और उसे स्थिर रखें। कभी श्रद्धा से विचलित होने लगे तो अपने को संभाल लें और दूसरे को संभाल लें। वास्तव में दर्शन की विनय तो यही कहलाएगी। और ज्ञान की विनय, ज्ञानवान की विनय और स्वयं ज्ञान का अभ्यास करना, ये कहलाती है ज्ञान विनय। अकेले शास्त्र की आरती उतार लेना यह ज्ञान की विनय नहीं है। हम स्वयं ज्ञान का अभ्यास करें और जो ज्ञान का अभ्यास करता है उसका सम्मान करें और कभी भी अपने हासिल किए गए ज्ञान का अहंकार न करें, तब वो ज्ञान की विनय कहलाएगी। मुझे याद है कि जिनेंद्र वर्णी और एक बार ईसरी में, जबकि उनका ज्ञान इतना था कि उन्होंने जैन दर्शन के लगभग 150 ग्रंथों का अवलोकन करके 17 वर्षों में और उससे डिक्शनरी बनाई, जैनन सिद्धांत कोश, जिसको कि आज देखने वाले नहीं हैं। कितने लोग होंगे जिन्हें जैनन सिद्धांत कोश के 6000 शब्दों का परिचय होगा, उसमें से कोई शब्द पूछ लिया जाए तो किस भाग में कहां पर मिलेगा, अभी खोल करके देखना तक नहीं जानते होंगे डिक्शनरी। और उन्होंने वो डिक्शनरी बनाई, इतना ज्ञान। इसके बाद भी एक दिन आचार्य महाराज और बिना किसी को बताए, जैसा कि उनका स्वभाव है, अनियत विहार, ये विरला ही कोई साधक होगा जो कर सकता है, जिसके आने जाने की कोई खबर किसी को लग जावे तो लग जाए, जो अपने मुख से खबर नहीं देता, वो अनियत विहारी, ये साधु का विशिष्ट लक्षण है। और ईसरी बाजार से नीमिया घाट के लिए आचर्षी बिना किसी से कहे और विहार कर गए। वर्णी जी ने उन दिनों आचार्य महाराज के चरणों में सल्लेखना धारण कर ली थी। देखिएगा आप कैसी स्थिति बनेगी कि कहां चले गए आचार्य महाराज, क्या पता लौट के वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे से दो शब्द भी कह के नहीं गए और मुझे तो, मैं सल्लेखना में निरत हूं, अब क्या होगा मेरा अगर वे लौट कर नहीं आएंगे। ऐसी दुविधा में वे दिन भर रहे। आचार्य महाराज नीमिया घाट से और पूरा संघ पार्श्वनाथ भगवान के वंदना करके पुनः उसी मार्ग से लौट कर 4:30 बजे जब हम लोग और लौटे ईसरी बाजार, तो आचार्य श्री के चरणों में माथा रख करके बहुत रोए और रोते रोते यही कहा कि आपने मुझे मोक्ष मार्ग पर लगाया और आप मुझे बीच में छोड़ करके चले गए, मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। तब आचार्य श्री ने बाद में हम लोगों से कहा कि देखो भव्य जीव अपना कल्याण कैसे कर लेता है। इन्होंने दिन भर भले ही ऐसे परिणाम किए लेकिन विनय बनी रही। इतना ज्ञान होने पर भी जिसके प्रति अपने को समर्पित किया है उसकी अनुपस्थिति में परोक्ष में उसका ही सहारा है, ऐसा भाव आना बहुत कठिन होता है। आज के समय में थोड़ा सा पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो जिसने पढ़ने लिखने में मदद की है उसे ही भूल जाते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे ज्ञान की दो बातें सीखी हैं, उसे ही भूल जाते हैं। और वर्णी जी इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी और अत्यंत विनय के साथ आचार्य महाराज से कह रहे हैं कि आप ही मेरे कल्याण में निमित्त हैं, सहारे हैं। कह सकते थे मेरे उपादान में योग्यता है, मैं तो कर लूंगा, आप तो निमित्त हैं। कह सकते थे कि मैं तो अपने आप कर लूंगा संलेखना, पर इतना ज्ञान होने के बाद भी कह रहे हैं कि आपके बिना मेरा काम नहीं होने वाला, यही तो विनय संपन्नता है। ठीक है, मैं संलेखना स्वयं करूंगा अपने उपादान की योग्यता के अनुरूप, लेकिन आपकी कृपा तो होनी ही चाहिए, आपका आशीर्वाद तो मेरे माथे पर होना ही चाहिए। ये विनय बहुत आसानी से नहीं आती भैया। ज्ञान के साथ में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए विनय आती जाए। ज्ञानवान को देख करके मन गदगद हो जाए और स्वयं ज्ञान के अभ्यास करने में रुचि हो, उसमें लिखा है कि आलस छोड़ करके ज्ञान का अभ्यास करना, ये है ज्ञान की विनय। और चारित्र की विनय, चारित्रवान की विनय और स्वयं चारित्र धारण करने की उत्सुकता, ये है चारित्र की विनय। जो 13 प्रकार का चारित्र आचार्य भगवंतों ने कहा है, भगवान की वाणी में जैसा चारित्र का प्ररूपण आया है उसे वैसा ही मैं अंगीकार करूं, उसकी विनय ये है। और जिन्होंने इस 13 प्रकार के चारित्र को पालन करना शुरू किया है, 13 प्रकार का चारित्र मालूम, 5 महाब्रज, 5 समिति, 3 गुप्ति, जो अपन समझ चुके हैं अलग अलग ढंग से, इसके प्रति जिसने धारण किया उसके प्रति भी विनय। और इतना ही नहीं, मैं कब धारण करूं ऐसी भावना, इसके प्रति उत्साह, चारित्र को धारण करने के प्रति उत्साह, दूसरे को भी उत्साहित करना, अरे तुमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, हम देख चुके हैं बहुत कठिन है, ऐसा कह देना जिससे कि वह चारित्र के मार्ग पर पीछे हट जावे। ये बात जुदी है कि उसे ये समझाना कि कठिन है, तुम साहस मत छोड़ना, तुम साहस पूर्वक इस मार्ग पर चलना, कितनी भी कठिनाई आवे। लेकिन यह ठीक नहीं है, तुम इसमें असफल हो जाओगे। और चारित्र से क्या होता है, चारित्र तो ऐसा कई बार धारण किया है, इतने पिछी कमंडल लिए हैं कि सुमेरु का के बराबर ढेर लग जाए तब भी बिना ज्ञान के और संसार में ही भटकते रहे हैं। ऐसा प्ररूपण करने से क्या होगा, चारित्र के प्रति जो श्रद्धा है, जो विनय है, वो खंडित हो जाएगी। कौन आगे आकर के और चारित्र को अंगीकार करने का साहस करेगा। आज यह कारण भी है हमारे नैतिक पतन का, ये बात गौर से विचार करना। जब जहां व्रत नियम संयम के प्रति आदर न रहे वहां पर क्या स्थिति बनेगी, नैतिक रूप से पतन ही होगा। आज वर्तमान में नई पीढ़ी के को हम देख रहे हैं, क्योंकि स्वयं ही माता पिता चारित्र को अंगीकार नहीं करते हैं, स्वयं ही व्रत नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये बात जुदी है कि कोई व्रत नियम का पालन करे फिर भी लड़के बिगड़ जाएं, वो उनका अपना पुण्य पाप, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। हम अगर स्वयं चारित्र को पालन करें और बच्चों को भी चारित्रवान बनने की बचपन में से शिक्षा दें, हम तो ये कहते हैं कि चारित्र में क्या रखा हुआ, ज्ञान हासिल कर लो, सम्यक दर्शन होना चाहिए, तब जाकर के वो चारित्र काम का होगा, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन चारित्रवान होगा तभी
कम से कम सदाचार का पालन करने वाला होगा तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकेगी। व्यसनी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जागृत उपयोग होवे, संगी पंचेंद्री भव जीव होवे, तत्व के अध्यास में रुचि होवे तो सम्यक दर्शन की भूमिका बने। तो इतना सदाचार का उपदेश तो देना ही चाहिए, अपने घर परिवार में भी इस चारित्र की विनय तो होनी ही चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज चारित्र में अत्यंत उत्कृष्ट थे और उसके साथ ही उनका ज्ञान भी इतना था कि आचार्य शिव सागर जी महाराज के संघ में जितने भी साधु थे, माताजी वगैरह थी, एलक छुलक और प्रतिमाधारी थे, सबके लिए वे अध्ययन कराते थे, इतना ज्ञान था। और उन्हीं आचार्य शिव सागर जी के संग में एक और चारित्रवान उन्हीं महाराज थे, आचार्य धर्म सागर जी महाराज। और एक बार आचार्य शिव सागर जी महाराज के समाधिस्थ हो जाने के बाद मुझे फिरोजाबाद वाले पंडित जी ने यह घटना सुनाई। मंच पर दोनों के प्रवचन होने की तैयारी थी और सिंहासन मंच पर एक ही लगा था और दोनों संघ पहुंचे, आचार्य ज्ञान सागर जी भी और आचार्य धर्म सागर जी महाराज भी। दोनों सिंहासन के पास जाके खड़े हो गए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि आप चारित्र में मेरे से ज्येष्ठ हैं, आप सिंहासन पर बैठे। तो आचार्य धर्म सागर जी बोलते हैं कि आप ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए पहले आप बैठे। बताइए आप, महापुरुष तो यही है जो एक दूसरे के ज्ञान दर्शन और चारित्र के प्रति अत्यंत विनयवान है। और तब फिर जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दोनों जन एक दूसरे के गले मिले और कहा कि सिंहासन हटाओ, एक जैसे बैठते हैं। कौन पड़े इस विकल्प में, ये सिंहासन तो शावक की दृष्टि से है, हमें क्या करना है इस सब का। जबकि प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है कि अधिक चारित्रवान भी अपने से अधिक ज्ञानवान की विनय करे। चारित्र विनय से भी अधिक ज्ञान की विनय है। ज्ञान और वो भी महावृत्ति के साथ में हो तब तो सोने में सुहागा माना जाता है। कि चारित्रवान व्यक्ति को ज्ञान भी उपलब्ध हो जाए, सम्यक ज्ञान, तब उसकी विनय ना करें हम, तब तो कभी भी ना हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और ना ज्ञान ना चारित्र। इसलिए सदा दूसरे के छोटे से छोटे व्रत नियम की भी विनय करना, क्योंकि कोई भी व्रत आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जब कोई कहता था कि छोटा सा व्रत दे दो तो क्या कहते, ये भैया व्रत कोई छोटा नहीं होता, सब भगवान की वाणी में आए हैं, इसलिए छोटे कैसे होंगे, सब भगवान के द्वारा कहे गए हैं। रात्रि भोजन का त्याग भी भगवान ने कहा है, इसलिए वो छोटा सा व्रत नहीं, बहुत बड़ा व्रत। किसी ने घंटे भर के लिए भी जो है भोजन का त्याग किया है तो वो त्याग जो है भगवान के द्वारा कहा गया त्याग है, इसलिए बहुत बड़ा है। उसकी पीठ थपथपाओ कि चलो तुमने सवेरे भोजन करने के बाद शाम तक अब कुछ भी नहीं खाऊंगा इतना भी विचार कर लिया है तो तुम्हारी पीठ थपथपाने लायक। बताइए जबकि शाम को फिर खाएगा, पर सुबह खाने के बाद शाम तक नहीं खाऊंगा, ये कमती बात है। अगर उस बीच में आयु बंद हो तो त्याग पूर्वक आयु बंधेगी, उस बीच में मरण हो जाएगा तो त्याग पूर्वक मरण हुआ है तो सरलेख ना कहलाए। अंतर मुहूर्त को भी चारों प्रकार के आहार का त्याग करके देह को छोड़ देवे तो सदगति हो जाए। ये चारित्र का महत्व है। इसलिए कभी भी स्वयं अगर चारित्र अंगीकार नहीं कर पाए, सदाचार का पालन नहीं कर पाए, तो दूसरा कोई अगर चारित्र के मार्ग पर बढ़ रहा है तो उसकी फीट तो थपथपा ही सकते हैं, मनी मन उसकी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं, वाणी के द्वारा भी हो सके तो उसका गुणगान कर सकते हैं। इस तरह ये चारित्र की विनय और फिर तप की विनय, तपस्वी जनों की विनय और स्वयं तप को को धारण करने का उत्साह, ये सब तप विनय कहलाती है। 12 प्रकार के तप जो जैसे भगवान ने कहे हैं, उन सब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, ये तप की विनय है। उन 12 प्रकार के तपों में से जितना मेरे से होगा मैं दिन भर में पालन करूंगा, ऐसा उत्साह, ये तप की विनय है। और कोई अगर तप करता है तो उसकी भी विनय, उसके भी पैर छू लेना कि आज तो आपने उपवास रखा है, आपके परिणाम बहुत निर्मल हैं, इसलिए हम आपकी विनय करते हैं, आपसे जय जिनेन्द्र करते हैं। ये हमने एक ही जगह देखा था, अभी जब हम पिछले बार चतुर्मास कर रहे थे तो वहां छोटे छोटे बच्चों ने उपवास रखा, तो बड़े बच्चे भी उनको आपस में जय जिनेन्द्र कह रहे थे। क्यों नहीं कह सकते हैं कि आज अपने आपने उपवास कर रखा है तो आपको जय जिनेन्द्र प्रणाम। ठीक है, वो बहुत छोटे बच्चे थे तो शाम को उन्होंने खा लिया, पर दिन भर तो नहीं खाया। आप 4 साल के बच्चे से क्या अपेक्षा रख सकते हैं, 4 साल के बच्चे से कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा, नहीं पिया उसने, शाम तक नहीं पिया। और फिर बाद में मैंने पूछा कि आप कि तब पानी तो पी लूं, मैंने कहा पानी नहीं, तुम दूध भी पी सकते हो, जाओ। पर दिन भर तुमने इतना किया, ये कम है क्या? अपन ये कहेंगे अरे काय को उपवास है, तुमने पानी पी लाओ, तुमने दूध पी लाओ, अरे और जो बाकी चीजें नहीं खाई पी वो को कछु नहीं भी नहीं दिख रही, जो कर लो है खा लो वो दिख रहा अपन को, जितना छोड़ पाया उतना कम है क्या? उसके लिए उसको जय जनम नहीं किया जा सकता, उसको प्रणाम नहीं किया जा सकता कि सौभाग्य आपका जो आपके मन में ऐसा विचार आया। वरना तो ये शरीर अन्न का कीड़ा है, दिन भर खाता पीता रहे तो भी संतोष को प्राप्त नहीं होता। और इतना ही तब बहुत है कि आपने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया, घंटे भर को, 2 घंटे, 4 घंटे को, ये तप हो गया। एक दूसरे को इस तरह से तपस्या के लिए उत्साहित करना और स्वयं भी तपस्या के लिए उत्साहित होना, वास्तव में यही तप की विनय है। और आखिरी उपचार विनय, पूज्य पुरुषों के सम्मुख आते देखकर खड़े हो जाना, उन्हें योग आसन देकर के फिर बैठना, नहीं अपन बैठे हैं आप आओ वो रखा बैठो आप भी बैठो, नहीं पहले आप आसन ग्रहण करें फिर, और हमेशा पूज्य पुरुषों से नीचे ही बैठना, उनके बराबर नहीं बैठना। ये सब उपचार विनय है। अंजलि जोड़ना, माथा झुकाना, उसमें तो लिखा कि पूरा शरीर ही ऐसा व्यक्त कर रहा है जैसे कि मैं बहुत विनय से भरा हूं, शरीर के एक एक अंग से विनय झलकती है। आचार्य श्री ने लिखा विनय संपन्नता का प्ररूपण करते हुए, बहुत पुराना प्रवचन है आचार्य महाराज का 1975 का, फिरोजाबाद में 16 कारण भावनाओं पर उनके प्रवचन हुए, तो उसमें लिखा कि जिसके अंतरंग में विनय है वो उसकी वाणी में और उसके पूरे शरीर से भी प्रकट होती है, तब वो विनय संपन्नता कहलाती है। पूरे जीवन से ही वो स्वयं विनय की मूर्ति बन जाता है, अकेले उसके वाणी में ही विनय नहीं है, उसका तो पूरा जीवन ही विनयवान हो गया है, तब वो विनय संपन्नता के। ऐसे उपचार विनय भी हम सबके जीवन में, और बहुत, मैं कोई उदाहरण सोच रहा था पर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, अब ध्यान में आ गया क्योंकि मैं लिखे रखा था और वो ध्यान नहीं आ रहा। अभ्यास नहीं करने से विद्या विस्मृत हो जाती है। हाँ, अब विचार जो है एक ही है कल से, कि आचार्य महाराज की आज्ञा का जल्दी से जल्दी पालन करना है, तो बाकी सब चीजें अब गौण हो गई, और उनकी आज्ञा के अनुरूप मुझे निश्चित समय पर और अपने गंतव्य पर, जहां उन्होंने आदेश दिया है वहां पहुंचना है। आप सबके बीच मैं जितने दिन तक रहा और हम सब ने मिल बैठ करके स्वाध्याय करा, अपने कल्याण की बातों पर विचार करा, शायद इतना ही संयोग था। और अब आगे आप भी हमें इसमें मदद करेंगे कि हम आचार्य महाराज की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि भावना तो सभी की होती है, लेकिन भावना और कर्तव्य के बीच में कर्तव्य बड़ा होता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है। आपकी भावना का सम्मान तो किया जा सकता है, लेकिन पालन तो आज्ञा का ही होगा। अभी नहीं जा रहा हूं, अभी प्लान कर रहा हूं। रिजल्ट तो क्लियर हो गया, डिक्लेयर नहीं है, डिसाइडेड है। अभी डिक्लेयर नहीं है, डिसाइड तो हो चुका। और यहां से कम 200-250 किलोमीटर तो चलना ही है। और सबसे बड़ा मेरे जीवन का जो सौभाग्य है वो ये कि मुझे शीघ्र ही आचार्य महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए मैं सब झेल सकता हूं। इसलिए मैं अत्यंत इस बात से प्रसन्न भी हूं, 200 नहीं 500 किलोमीटर भी मैं चलने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता हूं अगर आचार्य महाराज के दर्शन, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे 25 वर्ष के जीवन में कि 3 चतुर्मास से ज्यादा नहीं होते। पहले 1 चतुर्मास के बाद दर्शन मिल जाते थे, फिर 2 चतुर्मास के बाद, फिर 3 चतुर्मास के बाद तो मिल ही गए। ये पहला मौका है कि 4th चतुर्मास भी हो जाएगा, उसके बाद दर्शन हो पाएंगे। फिर भी इतना भी, क्योंकि हमारी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए हमें आवश्यक होता है, तो आचार्य महाराज ने इस बार हमारे ऊपर कृपा करके और ऐसा स्थान दिया जिससे कि हम जल्दी से उनके निकट पहुंच सकेंगे। उसी में मेरा मन लगा हुआ था। एक वो घटना जो मैं बहुत मन बना के सोचता था सुनाऊंगा, याद आ गई मुझे। शायद हो सकता मैंने पहले भी आपसे कभी जिक्र किया हो, आचार्य श्री के जीवन का संस्मरण है। सन 1991 की बात है, हम लोग 5-6 महाराज थे और सतना का चतुर्मास किया। सतना का चतुर्मास करके लौटे, कटनी में रुके, वहां से फिर जबलपुर आने को थे, आधार ताल में रुके थे। आचार्य महाराज का वहां पर समाचार आया कि तुम लोग जबलपुर आ जाओ। और आचार्य महाराज कहां हैं पता लगा, वो वर्गी डैम से चल चुके हैं जबलपुर की तरफ। तब तो बताइए फिर कैसे रुका जा सकता है। और बहुत तेज तेज चल करके हम लोग वहां से 15 किलोमीटर पहले मढ़िया जी आए। मढ़िया जी में पता लगा कि अभी आचार्य श्री और दूर हैं, आने वाले हैं, तो अब रहा नहीं जा सकता। मढ़िया जी में बैठ के इंतजार नहीं किया जा सकता उनका, कितनी दूर है। चल पड़े आगे, 6 किलोमीटर और चले तो वहां आचार्य श्री को पा लिया। फिर आचार्य श्री के साथ फिर वापस 6 किलोमीटर आए। उस दौरान जब रास्ते में चले आ रहे हैं तब चर्चा चली, और हमारे साथ समता सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज भी थे। सबका एक साथ चतुर्मास हुआ था 1991 में सतना में, और हम लोगों ने बहुत आनंद भी, धर्म ध्यान भी अच्छे से करा था, श्रावकों ने भी लाभ लिया था, तो हर्ष तो होता ही है। जब सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो किसको हर्ष नहीं होता। तो वह आचार्य श्री को सुना रहे थे कि महाराज आपकी कृपा से। बार बार हम लोग के मुंह से यही निकल रहा था कि जो कुछ भी अच्छा अच्छा हुआ वो सब आपकी कृपा से हुआ, नहीं तो हम लोग तो इतना सब सक्षम नहीं थे कि ऐसा सब कर सकें, पर बहुत अच्छा हुआ। आचार्य श्री सब सुनते रहे चुपचाप, फिर बोलते कि इसमें हमारा क्या है, ये सब तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का है, और ये तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है, सारा श्रेय उन्हीं लोगों के लिए, महान लोगों के लिए जाता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। भाई ये क्या कहलाएगी, गुरु के सम्मुख नहीं होने पर भी गुरु के प्रति अपनी विनय व्यक्त करना ये परोक्ष विनय है, उपचार विनय का एक भेद है। प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय उपचार विनय के अंतर्गत आता है। जब गुरु सामने है तब तो उनको हाथ दुनिया जोड़ लेगी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी उनके प्रति और विनय का भाव बना रहे, परोक्ष में भी उनका वैसा ही सम्मान हमारे मन में बना रहे, ये जो है उपचार विनय का उदाहरण आचार्य महाराज के जीवन का हम लोगों के लिए भी प्रेरणा देता है कि ऐसी ही विनय अपने गुरुजनों के प्रति, अपने धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति हमारे मन में बनी रहे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा और हम अपना कल्याण करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है।
प्रस्तुत कैसेट मैत्री समूह के द्वारा संयोजित एवं प्रचारित आध्यात्मिक भजनों का चतुर्थ पुष्प है। इससे पूर्व प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुष्प क्रमशः भक्ति गीत, आत्मीय संगीत और वंदना गीत के नाम से प्रस्तुत किए गए। इसके प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी हैं। इस कैसेट में आध्यात्मिक भजनों को कोमल और मधुर स्वरों में गाया है जौहरी बाजार जयपुर की बेटी सुश्री आशिका शाह ने। सुश्री आशिका शाह के गले की मिठास ने इन भजनों को हृदय ग्राही बना दिया है। उनकी आवाज में समाए संगीत का जादू हमें मुग्ध ही नहीं करता बल्कि शांत, स्वस्थ और प्रसन्न भी करता है। सुश्री आशिका शाह ने सन 2003 में बी म्यूज की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने बी म्यूज की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सुश्री आशिका शाह को उनकी इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए मैत्री समूह द्वारा रामगंज मंडी में आयोजित यंग जैना अवार्ड 2003 से भी सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व उनकी आत्मीय संगीत नामक कैसेट अत्यंत लोकप्रिय हुई है। प्रस्तुत कैसेट में आप सर्वप्रथम मुनि श्री क्षमा सागर जी के श्रीमुख से उनके आशीर्वचन सुनेंगे। इसके उपरांत सुश्री आशिका शाह के मधुर कंठ से भजनों का श्रवण करेंगे। तो लीजिए, सर्वप्रथम प्रस्तुत है मुनि श्री के आशीर्वचन स्वयं उनके श्रीमुख से।
भगवान की वितराग शांत मुद्रा का दर्शन और उनके गुणों का स्मरण हमारे मन प्राणों को निर्मल बनाने में सहायक है। जिन क्षणों में हमारा मन भगवान की भक्ति में, उनके गुणगान में लीन होता है, उन क्षणों में हम अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के समक्ष विभिन्न प्रकार की स्तुति, भजन, पूजन आदि के माध्यम से भगवान के गुणों का स्मरण करने की परंपरा आज भी है। शास्त्र स्वाध्याय के समापन पर प्राचीन कवियों के द्वारा रचित आध्यात्मिक पदों को मधुर स्वरों में गाने का भी प्रचलन है। भगवान की भक्ति से ओतप्रोत आध्यात्मिक भजनों में समाया हुआ मधुर संगीत हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। भारतीय संगीत की एक विशेषता यह भी है कि वो हमें स्वस्थ, प्रसन्न और सक्रिय बनाता है। व्यक्ति की मानसिक कार्य क्षमता बढ़ाने और वातावरण को मंगलमय बनाने की सामर्थ्य भी संगीत में है। भारतीय संगीत की गरिमा के अनुरूप जौहरी बाजार जयपुर की बेटी ने बड़ी मेहनत और लगन से अपने कोमल स्वरों में जो भगवान की भक्ति की है वो प्रशंसनीय है। आत्मीय स्पर्श की प्रस्तुति में सहयोगी सभी धर्मानुरागी बंदियों को मेरा आशीर्वाद।
Thank you.